તારીખ 6/3/1996 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મહાવીરજીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 13.
પ્રશ્ન હે આચાર્ય વિદ્યાસાગરજીને ભગવાન કુંદકુંદ દ્વારા રચિત સિદ્ધાંતો મેં મૂળ સિદ્ધાંત કો બદલ કર લિખા હૈ કે મિથ્યાત્વ અકિંચિત કરે હૈ कृपया इस पर संक्षिप्त विवेचन करें, क्या यह ठीक है। प्रश्नकारों से मेरी प्रार्थना है कि किसी व्यक्तिगत विचारों को दूसरे व्यक्ति के नाम से प्रश्न में नहीं रखें। वहां सिद्धांत की चर्चा तत्व चर्चा करने को बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी करने को नहीं बैठे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के नाम लेकर के कोई प्रश्न उत्तर नहीं चलेगा। मिथ्यात्व है, उस विषय में भगवान उमा स्वामी ने आसन तत्व बताया है, जो बंध के कारण है। मिथ्यात्व अव्यक्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवः, ऐसा भगवान उमा स्वामी का सूत्र है। बंध के पांच हेतु, पांच कारण, पांच प्रकार के आश्रय है। मिथ्यात्व है, अविगति है, प्रमाद है, कषाय है और योग है। तो ये जो सूत्र है वो समय सारणी से इसमें मिलता है और वैसे हमारे आधारभूत ऑथेंटिक जो सूत्र है उस भी सूत्र में ये सूत्र भी शामिल है। प्रश्न है, आत्म जागृति अगस्त 1995 में आपके द्वारा लिखित लेख में पृष्ठ 8 पर संकेत का बीज सत्संग सदगुरु का न मिलना इससे जीव को सम्यक नहीं हुआ, इसी और निमित्त को गौण करने पर ही उपादान कारण से कारण परमात्मा दृष्टि का विषय बने, सब तब तब सम्यक्त्व हो, यह आगम अध्यात्म दोनों परंपरा से परस्पर विरुद्ध है, क्या इस तरह प्रचार करना असली मोतियों में खोटे मोती चलाने जैसा प्रयास नहीं है। सुख का मूल सम्यक दर्शन है, ऐसा मुख पृष्ठ पर सुख का मूल सत्संग है, यह तो हठाग्रह मताग्रह है जो ग्रहित मिथ्यात्व को सूचित करता है। आगम सम्मत समाधान करे, तो सभी आगमों में सत्संग की महिमा तो आई है, समय सारणी भी आई है और सभी आगमों में आई है। और सत्संग और सदगुरु का नहीं मिलने से देशना लब्धि तो होती नहीं, बिना देशना लब्धि जब चार लब्धियां ही नहीं आती तो सब समय पर तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। समय तो मोक्ष का मूल है, सर्व सुख का मूल है, वो बात भी सही है अपने स्थान में, और इसके पहले के स्तर में सत्संग हुए बिना, सदगुरु मिले बिना समय तो होता भी नहीं। तो दोनों अपने अपने स्थान में है, किस स्तर में किस बात होनी चाहिए ये बात का अच्छी तरह हमें ज्ञान हो, समझ हो, तो इस प्रकार का असमाधान नहीं होगा। दोनों गुणस्थान वृत्ति को चौथे गुणस्थान वृत्ति को होटल में बना भोजन करने का विकल्प आ सकता है, ये जो प्रश्न है। तो खान पीन वाला जो है वो अनेक प्रकार के आते हैं, ऐसे प्रश्न में हम नहीं उलझे, वो अच्छा है। आपने यह बतलाया कि संस्कारी जीव निसर्ग में बिना सदगुरु समीप दर्शन प्राप्त करता है, तथा पूर्व में किसी ज्ञानी धर्मात्मा के भाव विभोर दशा में निकले वचन बहुत रसपूर्वक सुनने से आत्मा के संस्कार पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय के आनुषंगिक भाव तथा अन्य क्या क्या लक्षण है, तथा ऐसे आत्मसंस्कार अधिक से अधिक कितने भवों बाद पुनर्जीवित होते हैं। वो संस्कार पढ़ते हैं वो रुचि के काल में पढ़ते हैं, ऐसे श्रुत का श्रवण होता है तब आनुषंगिक भाव में तो एक आत्म तत्व की रुचि है, स्वभाव की रुचि ही है, वो संस्कार पढ़ने में पर्याप्त कारण बनती है, ये इसका खास लक्षण है। धर्म का संस्कार पढ़ना और आत्मा का संस्कार पढ़ना, संस्कार तो स्वभाव का ही पड़ता है मिथ्या तो अवस्था में, वे धर्म का संस्कार कहो या आत्मा का संस्कार कहो, ऐसे जिनको
एक्शन में कोई प्रयास ना सुनने के बाद सुन करके बात बीत जाती है, यह कोई प्रयास ना
नहीं। कभी कभी तो मालूम भी नहीं पड़ता है खुद को भी, ऐसा भी बन जाता है, लेकिन जो एक गहरी छाप आत्मा में पड़ गई, अपने काल में पड़ गई, और दूसरे भाव में या तीसरे भाव में वो पुनर्जीवित हो जाते हैं यानी जागृत हो जाते हैं, प्रायः ऐसा होता है। दूसरे जागृत होना मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, अनुभूति की प्राप्ति होना, उतनी सी बात है, पर उसका कारण है अध्यात्मिक तत्व की रुचि, रुचि से ही काम होता है। दूसरा प्रश्न है अच्छा, ऐसे आत्मरुचि का दो भेद है, एक तो भाव भाषण के काल में जो रुचि प्रकट हुई, एक तो वो रुचि है, उसको व्यक्त रुचि कहते हैं, जिसका पता खुद को चलता है। और भाव भाषण के पहले कभी किसी जीव को ऐसे सत्श्रवण के काल में कोई रुचि पैदा हो जाती है, उसको अव्यक्त रुचि कहते हैं, जिसका खुद को पता नहीं चलता। संस्कार दोनों जगह पड़ता है। तो सामान्य सिद्धांत वो हुआ कि जो संस्कार पड़ता है वो रुचि के कारण से पड़ता है। वो इसका एक संस्कार पड़ने का आनुषंगिक परिणाम है, दूसरे परिणाम के साथ कोई नियम और सिद्धांत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे तो अनंत बार सदगुरु का योग हुआ है, तीर्थंकरों का भी अनंत काल हुआ है, जगत गुरु का भी अनंत काल हुआ है, लेकिन योग योग रूप नहीं हुआ। इसका मतलब कि हमको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो फिर संस्कार पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो योग का मतलब है संयोग, और योग का योग रूप होना, मैंने योग मैंने ये जो योग है तो ज्वाइन अनुसंधान होना, उसको कहते हैं योग का योग होना। और मात्र योग होना मैंने संयोग होना, तो संयोग द्रव्य संयोग तो अनंत बार हो चुका है। ये भाव से जोड़ान होता है, योग होता है, इसको योग का योग कहते हैं। इन दोनों में वो अंतर है। हमको वर्तमान में धार्मिक विषयों में रुचि रहती है, सत्संग के समय बहुत भावुक हो उठते हैं, क्या इससे स्वयं को संस्कारी जी मान सकते हैं? देखिए, हमारा ध्येय या हमारा लक्ष्य संस्कार पर रहना नहीं चाहिए कि संस्कार पड़ जाए तो अच्छा, संस्कार पड़ जाए तो अच्छा, और हम हमारे परिणाम को इसी तरह से, इसी दृष्टिकोण से नहीं देखें, नहीं नापें, कि वो कोई हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय तो पूर्ण शुद्ध होने का होना चाहिए। बीच में फिर ये संस्कार होता है, भाव भाषण होता है, अनुभूति होती है, मुनि पद आता है, सब बीच में हो जाता है, लेकिन हमारा ध्येय पूर्ण शुद्धि का है, तो बीच में सब हो ही जाएगा। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ संस्कार का आधार लेकर के हमें कोई काम नहीं करना होगा। उपर्युक्त प्रकार के अभिप्राय में गर्भित रूप से यह भाव रहता है कि सदगुरु की खोज के लिए बहुत श्रम न करके जिन प्रतिमा जिन वाणी के निमित्त से ही दर्शनों का उपशमन हो सकता है, तो क्या ऐसा भाव विसंगत है? ठीक है कि ऐसा भाव सुसंगत तो नहीं है, क्योंकि जो वाणी है उसमें वचन प्रयोग है, वचन शब्द से बना हुआ है, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। हम हमारी भूमिका में सही अर्थ करेंगे या नहीं करेंगे ये खुद को तो मालूम नहीं पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ग्रंथ तो बताएंगे बताएगा नहीं कि तुमने हमारा गलत अर्थ किया। तो इस तरह से अगर हम पढ़ते पढ़ते कहीं अर्थ का अनर्थ करेंगे तो ग्रंथ तो नहीं बताएगा कि तुम्हारी भूल हो रही है, ऐसा मत करिए तुम। ऐसा ही जिन प्रतिमा में है तो ये जो भाव रोग है वो अनादि का एक क्रॉनिक डिजीज है, बहुत पुराना रोग है। पुराना रोग हो वक्त का मतलब ये होता है कि जो रोग पुराना हो जाता है वो उतना घर कर जाता है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और भयंकर भी है। जब कोई भयंकर रोग घर कर जाता है तो मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसकी देखभाल अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन करनी पड़ती है। इसलिए सत्संग या सदगुरु की आवश्यकता महसूस होती है कि जीव कदम कदम पर भूल कर बैठता है। भूल के भूलने के हजारों स्थान हैं। खुद कहां भूल करेगा खुद को पता नहीं लगता है। डॉक्टर भी जब बीमार होता है दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करता है, तो मरीज बीमार पड़ता है जो डॉक्टर नहीं है उसके लिए तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करना जरूरी है और खुद को इस विषय में थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक गंवार है, अनपढ़ आदमी है, देख लीजिए उनको दर्द होता है पीठ में या सिर में या कहीं भी शरीर में, उसको पहला मेडिकल के किताबें बहुत मिलती हैं, वो पढ़ने का विचार आएगा। मेडिकल स्टोर भी बहुत है उसमें से दवाई लेने का विचार आएगा या डॉक्टर के पास के वैद्य के पास जाने का विचार आएगा। आप अपने आप से देख लीजिए कि हमको दर्द हुआ हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्यों कि एक सिर दर्द पर तो सैकड़ों दवाई है, कौन सी दवाई लेंगे। और किताबें भले बड़े बड़े डॉक्टर ने लिखी है फिर भी कौन सी दवाई किस मात्रा में लेना, कब लेना, कब नहीं लेना, कब बंद करना, कम करना, ये कौन बताएगा। गवार को भी इतनी अक्कल होती है कि पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहले किताब पढ़ने को बैठेंगे या मेडिकल स्टोर में जाएंगे, वो बात ठीक नहीं है। तो हम तो बुद्धिमान हैं, इस विषय में क्यों गलती करेंगे, नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत भयंकर रोग है, भाव रोग है, ये बहुत भयंकर रोग है। इसके लिए तो जितना भी ज्ञानी के का संग मिले उतना अच्छा ही है, क्योंकि मार्गदर्शन मिल सकेगा और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। थोड़ा तो प्रैक्टिकल होना जरूरी है इस विषय में।
डॉक्टर का अभाव हो गया, तो डॉक्टर ना मिले, अब माओ था लगे उसको, जैसे डॉक्टर ना गए वहां पूछा, यानी जैसे दिखाई ना पड़ते हो
तो खोजे। देखो देखो, अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पैसा हमारा जीवन निर्वाह नहीं चलता है, तो हम देश विदेश में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अफ्रीका जैसे जंगली देश में हमारे लोग गए कि जिसके बीच में जीना बहुत मुश्किल है, अफ्रीका के छोटे छोटे गांव में हमारे लोग गए हैं, अपना देश को, वतन को, गांव को, परिवार को छोड़ छोड़ करके क्यों गए? एक जीवन निर्वाह के लिए जितना परिश्रम हम उठाते हैं वो देहार्थ के लिए होता है। क्या आत्मार्थ के लिए हमने इतना परिश्रम किया? इसका मतलब हमको आवश्यकता नहीं लगी। जब आवश्यकता ही नहीं लगी तो हम आशा अपेक्षा कैसे रखते हैं इसकी सफलता के लिए? तो उतनी जरूरत तो पहले महसूस हो गया कि आत्मकल्याण का कार्य देहार्थ से अधिक चिंता करने योग्य है। अनंत बार आत्मा के लिए, देह के लिए आत्मा को गाला, एक बार आत्मा के लिए देह भी गल जाए तो भले गल जाए, ऐसी भावना अगर उठती है तो ये तो कुदरत बंधी हुई है। ज्ञानी गुरु के भेंट कराने के लिए तो कुदरत बंधी हुई है। रो दृष्टांत तो सुबह सुगानी जी का दिया कि नहीं दिया, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो तैयार हुए, ऐसे मानते हैं कि ज्ञानी के वचन ही शास्त्र है। पूज्य गुरु जी श्री कृपानुदेव श्रीमद राजचंद्र जी को असाधारण पुरुषार्थी व एकावतारी ज्ञानी बतलाया है, पर चूंकि वे गृहस्थ तथा अविरत समय दृष्टि थे तो उनके वचनों को संपूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए किन्हीं आचार्यों के वचनों का आधार व प्रमाण ही प्रमाण की चाह उठने में क्या अनुचितता है? देखिए, एक ज्ञानी का जो अभिप्राय है वो अनंत ज्ञानियों का, अनंत आचार्यों का और अनंत तीर्थंकरों का अभिप्राय है। इसमें हमें कहीं शंका होनी नहीं चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो या त्यागी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आत्मानुभवी होते हैं वो अनुभव के प्रकार अलग अलग किसी के नहीं होते। सबों को पदार्थ दर्शन तो एक सा ही होता है, अनुभव एक सा ही होता है, और उस प्रयोजन में किसी का दो मत कभी हो सकता नहीं है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो गुरुदेव श्री ने कृपालुदेव के लिए जो भी कहा है वो सही कहा है, और गुरुदेव श्री के आज हमारे पास करीब 9-10 हजार प्रवचनों की टेप मौजूद है, शायद एक भी प्रवचन मिलना मुश्किल है कि जिसमें गुरुदेव श्री ने कृपालुदेव के वचन का आधार नहीं लिया हो, उद्धरण नहीं किया हो, ऐसा एक प्रवचन निकालना भी मुश्किल है। ऐसे गुरुदेव श्री के प्रवचनों में श्रीमद जी के कृपालुदेव की बहुत सी बातें आई हैं, और जहां तक इस ग्रंथ का मेरा अभ्यास है, मुझे लगा है कि मुमुक्षु की भूमिका के विषय में उन्होंने अपने संपर्क में आए हुए मुमुक्षुओं को जो मार्गदर्शन दिया है, भिन्न भिन्न योग्यता वाले मुमुक्षु को भिन्न भिन्न मार्गदर्शन दिया है, इसमें से अपने योग्य कुछ न कुछ बात मिल जाती है। इसलिए इस भूमिका के मार्गदर्शन का विस्तार जैसा इनके वचनों में इस ग्रंथ में से मिलता है, उतना अन्य ग्रंथों में मिलना मुश्किल है। इसलिए मुमुक्षु के लिए ये बहुत काम की चीज आज उपलब्ध है, और इसी दृष्टि से इसका उदाहरण करने में आएगा तो शायद बहुत लाभ हो सकता है। प्रश्न है, पर प्रकाशता ज्ञान के विकास प्रमाण प्रमाणे होती है या वितरागता कषाय के अभाव के प्रमाण से होती है? पर का जानना ज्ञानावरण का जितना क्षोभण होता है उसी के अनुसार होता है, वितरागता के अनुसार नहीं होता है। हमारे पुराणों में प्रसिद्ध दृष्टांत है कि शिवभूति मुनि को ज्ञानावरण का क्षोभण बहुत कम था, वो नवतत्व का नाम भी उनको याद स्मरण में नहीं रहता था, फिर भी वो वितरागता के वसात केवल ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण पद में पधारे। तो छद्मस्त अवस्था में पर प्रकाशकपना ज्यादा हुए तो कोई जरूरी चीज नहीं है, प्रयोजनभूत नहीं है, वितरागता ही प्रयोजनभूत है। पर का ज्ञातापना जलकन मात्र है या उस जलकन के काल में विकार रहित पना है? पर का ज्ञातापना जलकन किसको है, ये बात प्रश्न में नहीं आई है। मिथ्या दृष्टिकोण है, सम्यक दृष्टिकोण है या सम्यक दृष्टिकोण आपका प्रश्न है? अच्छा, पर का ज्ञातापना जलकन मात्र है या उस जलकन के काल में विकार रहित पना है? देखिए, पर का जलकन विकार का कारण नहीं है, यानी पर का प्रतिबिंब जो ज्ञान में आता है ये कुछ विकार का कारण नहीं है, ये ज्ञान की स्वच्छता का कारण है। फिर जो भी विकार होता है उनके कारण अलग है, उनके कारण वो है कि जितना अपनी अस्थिरता है सम्यक दृष्टि को उतना होगा, जितना परसत्ता का अवलंबन होगा उतना होगा, और जितना प्रसन्नमुखता आएगी उतने अंश में ये होगा। लेकिन महाग्निज नायक शंकर दोष नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व सहित का विकार नहीं होगा, उतनी सी बात है। श्रीमद में स्थित प्रज्ञ दशा किसे कहा है? स्थित प्रज्ञ मैंने जिसकी प्रज्ञा मैंने ज्ञान आत्मा में स्थित हुई उसे स्थित प्रज्ञ कहा है, और उस प्रज्ञता की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से होती रहती है। छह झाला प्रवचन में पूज्य गुरुदेव का कथन है कि सम्यक ज्ञान स्वपर को जानता है और वितरागता को सहता है, तो यहाँ ज्ञान के दो कार्य, जानना और वितरागता को साधना क्यों बताया है? वो तो साथ साथ वितरागता को साधता है। स्वपर के ज्ञान होते समय भी सम्यक दृष्टि आत्मा वितरागता को साधते रहता है। पर को पर से भिन्न, पर को पर रूप में जानते हैं, इसलिए पर को पर रूप में जानना ये ज्ञान का विवेक है, वो कोई ज्ञान का दोष नहीं है। पर को पर के रूप में जानना वो तो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का स्वभाव है, वो कोई दोष नहीं है। और पर को पर रूप से जानने से तो वितरागता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये होता ही है सम्यक दृष्टि को। ये तो कार्य तो चारित्रता का, चारित्र का है, लेकिन ज्ञान कारण पड़ता है। ज्ञान है वो कारण पड़ता है व्यवहार से, बाकी तो सभी गुण निश्चय से तो अपना अपना कार्य असहायता से करता है। किसी गुण की सहाय लेने की किसी को जरूरत नहीं होती, लेकिन मोक्ष मार्ग में या बंध मार्ग में एक गुण के निमित्त नैमित्तिक संबंध से दूसरे गुण में भी अविनाभावी रूप से असर पहुंच